أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وأخوات. پچھلے کچھ عرصے سے مینجمنٹ جس کا وجود انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی دنیا میں شروع ہو گیا تھا, جو ہی بابا آدم اتارے گئے زمین پر, لیکن پچھلے 50 سال میں مینجمنٹ نے سائنس کی شکل دھار لی اور رفتہ رفتہ اس کے بہت سے اصول وضع ہوئے. اب تو دنیا کی سبھی یونیورسٹیز مینجمنٹ سائنسز کے نام سے تعلیم دیتی ہیں, اور اس میں گریجویشن سے لے کر پی ایچ ڈی تک کرواتی ہیں یہ یونیورسٹیز. تو جب ہم مینجمنٹ سائنس کی بات کرتے ہیں, اس میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک لیڈرشپ, اور دوسری پلاننگ. پلاننگ تو بڑی سیدھی سیدھی, اس کی ڈیفینیشن پروفیسر کوٹس نے غالباً سب سے اچھی ڈیفینیشن اس کی بیان کی, جو سب سے مختصر ترین ہے اور اتنی ہی جامع بھی ہے, بہت ایکسپلیسٹ, بہت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے پلاننگ کی. پلاننگ از اے برج بٹوین وٹ وی آر اینڈ وٹ وی وانٹ ٹو بی. تو انسان جہاں آج کھڑا ہے اور جس جگہ وہ پہنچنا چاہتا ہے, ان دونوں سروں کو جو ملا رہا ہے, یا اگر آسان لفظوں میں چلے جائیں کہ جو کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اس تک پہنچنے کا راستہ پلاننگ ہے. لیکن لیڈرشپ تھوڑا سا انٹریکیٹ سبجیکٹ ہے, اور یہ آبجیکٹو سے سبجیکٹو ہوتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لیتا. کہ ہم اپنی سوچ میں آبجیکٹو ہوتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم سبجیکٹو ہو گئے. اور لیڈرشپ کو ڈیفائن ابھی تک سائنس نہیں کر پائی کہ لیڈرشپ ہے کیا. جس طرح سے پلاننگ کی ایک سطر کی ڈیفینیشن بیان ہو گئی, اس طرح کی ڈیفینیشن لیڈرشپ کی نہیں آ سکی. یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے. لیکن فقیر اس کو ڈیفائن کر لیتا ہے, اور وہ کرتا ایک ہی جملے میں ہے کہ لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور ڈسکریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہو, وہ لیڈر ہے. یہ روحانیت میں اس لیڈر کی ڈیفینیشن یہ ہے. جو اچھا کام ہوا وہ میرے ساتھیوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کیا. جو غلطی ہوئی وہ میری ہے, میرے ساتھیوں کی نہیں ہے. فقیر اس کو, لیڈرشپ کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے. ये दुनिया के आम दस्तूर से हटकर डेफिनेशन है. दुनिया का दस्तूर तो ये है कि जो अच्छा काम हुआ उसका क्रेडिट मेरा है, जो गलती हुई वो दूसरों की है. ये फकीर के रवैये में ये फर्क किस चीज ने पैदा किया? वो है उसकी रूहानी कुव्वत. उसकी रूह में जो स्ट्रेंथ है और उस रूह की स्ट्रेंथ का मंबा दो जगहों पर, दो चीजें उसका मंबा है उसकी रूहानी कुव्वत की. एक कन्विक्शन कि अल्लाह की जात पर जो इंतहाई पुख्ता यकीन है उसका, कि रब ताला न सिर्फ ये कि वो मौजूद है बल्कि उसकी के उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज पत्थर की लकीर है, बदल नहीं सकता. और ये कि मेरा रब अपने वादे का बड़ा सच्चा है, अपने वादे के खिलाफ कुछ नहीं कर, कभी नहीं करता. ये कन्विक्शन है उसका. और दूसरी चीज है उसकी मोटिवेशन. वो मोटिवेट होता है एक चीज से कि ये मेरे रब को पसंद है, मेरा रब इससे राजी होता है. तो मोटिवेशनल फोर्स और कन्विक्शन मंबा है उसकी उस रूहानी कुव्वत का. अब ये जो कन्विक्शन है, जो यकीन है, पुख्ता यकीन, ये सिर्फ दो ही सूरतों में पैदा हो सकता है. या तो इंसान अपनी आंखों से देख ले तो उसे यकीन आ जाए कि ये ऐसा ही है, या वो खुद उस तजर्बे में से गुजर जाए. ये दो चीजें हैं जो उसे उस मकाम पर ले जाएंगी जहां पर वो इस कदर पुख्ता यकीन रखेगा रब ताला पर कि वो रास्ते पर अंधाधुंध आगे बढ़ता जाए कि मेरा रब मौजूद है, मेरा रब मुझे लुक आफ्टर करेगा. और दूसरी उसकी मोटिवेशनल फोर्स उस वक्त आएगी जब वो रब के इश्क में मुब्तला हो जाए, फिर वो मोटिवेशनल फोर्स है उसकी. क्योंकि ये इंसान की फितरत में है कि जिससे वो प्यार करता है उससे वो खौफ खाता है इस बात का कि ये मुझसे नाराज ना हो जाए. तो वो उसकी मोटिवेशनल फोर्स बन जाती है. जब ये दो चीजें उसमें आएंगी तो वो फिर दुनिया का बेहतरीन लीडर बनता है. लीडर हर सतह की बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि वो मुल्क ही को चलाए. अब इसके अंदर एक तीसरी चीज आके शामिल होती है हमारे यहां, वो है इल्म। जितना ज्यादा किसी शख्स के पास इल्म है, रब पर भरोसा उसका उतना ही ज्यादा है, उसका कन्विक्शन उतना ही स्ट्रांग है। ये इल्म उसे वो राह सुझाता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या हकीकत है और क्या गैर हकीकी चीजें हैं। इस चीज को वाज़े करते हुए मौलाना रोम ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से मिसाल है। हम जब खुद छोटे होते हैं खुद भी यही हरकत करते हैं, और बड़े होकर हम किसी गली मोहल्ले से गुजरे हैं तो वहां ये हरकत होती देखते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे एक स्टिक को घोड़ा बनाए हुए हैं, उस पर अपने टांगों में उस स्टिक को दबाए हुए दौड़ रहे होते हैं कि घोड़े पर जा रहे हैं, और उसी से वो लुत्फ लेते हैं। लेकिन यही बच्चा जब जरा बड़ा हो जाता है तो वो घुड़सवारी करता है, फिर तो फिर वो स्टिक उसके टांगों के दरमियान नहीं होती बल्कि घोड़ा उसकी टांगों के दरमियान होता है। तो उस वक्त उसे ये एहसास होता है, वो अपने इस बचपन की हरकत पर कहके लगाता है कि मैं भी क्या नादान था कि एक गैर हकीकी चीज को हकीकत समझ बैठा था। असल चीज तो ये है जो घोड़ा इस वक्त जिस पर मैं बैठा हूं और इसकी सवारी के मजे ले रहा हूं, तो वहां तो खुद ही दौड़ता था, खुद ही थकता था और इस वहम में मुब्तिला था कि मैं घोड़े पर बैठा हूं। तो इल्म हमें असल में चीजों को इस तरह वाजे करके दिखाना शुरू कर देता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। शायद यही वजह हो कि रब ताला ने कुरान पाक में एक चीज को बड़ी खूबसूरती से वाजे किया कि इल्म वाला और बेइल्म कभी एक बराबर नहीं हो सकते। तो जब हम इल्म हासिल करते हैं तो अच्छे और बुरे की पहचान हमारे अंदर पैदा हो जाती है। तो जिन चीजों को पहले बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, इल्म हासिल होने के बाद पता ये चलता है कि आज तक हम खिलौनों से बहलते रहे। तो जब अच्छे और बुरे की पहचान होने लगती है तो फिर इंसान नेकी की तरफ आता है। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा दायरा है जो मुकम्मल नहीं होता तब वक्ते के इन चीजों से गुजर ना जाए। और इल्म इंसान को किताबों से मिल जरूर जाता है, इसको हम इक्तसाबी इल्म कहते हैं। लेकिन ये इक्तसाबी इल्म जहां से हम ले रहे हैं वो भी एक इंसान का लिखा हुआ है, तो उसके इल्म के अंदर कोई कमी, कोई कज्जी, कोई खामी वो हम तक भी मुंतकिल हो जाएगी, اور بحیثیت انسان کے ہماری اپنی جو خامی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. تو ایک تو وہ علم ناقص ہوگا, اس کے اندر فالٹ ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہماری یادداشت کے ساتھ ہے, ہماری میموری کے ساتھ ہے. تو یہ علم کچھ عرصے کے بعد یا تو ذہن سے محو ہونے لگے گا یا اس کا کوئی ایک حصہ بھولنے لگے گا انسان کو. تو یہ ایکوائرڈ نالج, اس کے اندر یہ خامی ہے کہ جس جگہ سے ہم نے وہ سیکھا, پڑھا, لیا, اس شخص وہ بھی انسان ہے, وہاں بھی خامیاں موجود ہیں. تو اس شخص سے لیے ہوئے علم کے ساتھ ہی اس کی خامیاں بھی ہم تک آ جائیں گی. سیکھنے والا بھی انسان ہے, اس کی بھی خامیاں ہیں, خطائیں ہیں, وہ بھی اس کے اندر اور شامل ہو جائیں گی. تو ہم ساری عمر فالٹی علم کے ساتھ زندہ رہیں گے, اور چونکہ وہ ہم نے سیکھا ہے, اس کا تعلق براہ راست ہماری یادداشت کے ساتھ ہے. تو یادداشت انسان کی جوانی میں بھی کبھی تیز ہوتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے, اور جو جو عمر بڑھتی ہے تو یادداشت بہت ہی کمزور ہونے لگتی ہے, تو بھولتا چلا جائے گا. لیکن جو علم ہم نے کمایا ہے, محنت کی ہے, اللہ کے ساتھ لو لگائی ہے, نیکی کی راہ اختیار کی ہے, اور اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ ہم پر مہربان ہوا ہے, اور رب تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا جسے عام لفظوں میں ہم علم لدنی کہتے ہیں, وہ علم یادداشت کھو جانے کے باوجود ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا. دنیا کی ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, بانٹنے سے کم ہوتی ہے, لیکن یہ علم لدنی ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو فیض پہنچانے سے بڑھتا ہے بجائے کم ہونے کے. جتنا انسان تقسیم کرتا چلا جاتا ہے, اس کے پاس علم اتنا ہی فراواں ہوتا ہے, اس کی فراوانی بڑھتی ہے. چونکہ یہ علم براہ راست دل پر اترتا ہے, اس لیے اس کا یادداشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ علم دل پر اترتا اس وقت ہے جب دل ہمارا آئینے کی طرح چمکتا رہے, صاف, اس پر کہیں گرد کا ایک ذرہ دکھائی نہ دے. اور دل ہمارا آئینے کی طرح چمکے گا اس وقت جب ہم دل سے آلائشیں نکال دیں. ہمارے گھر میں جیسے آئینہ ہے, یا آپ کار چلاتے ہیں اس کی ونڈ سکرین ہے, اس پر مٹی پڑی ہوتی ہے تو ہمیں صاف دکھائی نہیں دیتا, ویو دھندلا رہتا ہے, ہماری ججمنٹ بھی بعض کا غلط ہونے لگتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ونڈ سکرین کو بالکل صاف رکھیں تو ویو بھی کلیئر رہتا ہے اور ججمنٹ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو اسی طرح ہم اپنے دل پر جمے ہوئے زنگ کو اگر اتاریں, اس کے اندر جو آلائشیں ہیں ان کو صاف کریں, تو دل چمک اٹھتا ہے اور پھر اس پر علم خوب اترتا ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے بڑی کڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں کسی زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ اسلام کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے. جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. تو کلمہ توحید کی ابتدا نفی سے ہے, لا. جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اس وقت سے پہلے جتنے اس کے خیالات ہیں, اعتقادات ہیں, ان کو وہ ختم کر دیتا ہے لا کہتے ہوئے. وہ نفی ہے لا, اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام چیزوں کو, پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی ابتدا نفی سے ہے. اسی طرح روحانیت کی ابتدا اپنی ذات کی نفی سے ہے. جب تک انسان کی اپنی ذات کی نفی نہیں ہوتی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور ذات کی نفی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے, سب سے کمتر سمجھے. ہر انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے, یہ اس کی ابتدا ہوگی. اور اس کا سب سے آسان طریقہ اور راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ انسان دوسروں کو اچھا سمجھے, دوسروں کو برا نہ سمجھے, خواہ وہ اس کا کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو, اس کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دیتا ہو, اس کی کتنی ہی جڑیں کیوں نہ کاٹنے والا ہو, پروپیگنڈا کرتا ہو, اس کے غیبت کرتا ہو, اسے برا نہ سمجھے. یہ ایک اس کا بنیادی نقطہ ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتا ہے انسان فقر کی راہ پر چلنے کے لیے. جیسے اگر مجھے کہیں جانا ہے تو میری سفر کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب میں اس دروازے سے باہر قدم رکھوں گا تو میری سفر کی ابتدا ہو جائے گی. تو اسی طرح اس راہ پر چلنے کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کو برا نہ جانے, خواہ وہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو انسان کا, کتنا ہی دکھ کیوں نہ دیتا ہو, اس کو برا نہ سمجھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اگر ہم اور شامل کر لیں اس میں, اور یہ وہ صرف بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات کو, ان کی خواہشات کو مقدم جان لیں اپنی خواہشات پر, اپنے ارادوں پر, اپنی ضروریات پر, دوسروں کو مقدم جان لیں. तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और हम इस मकाम तक आ जाएंगे कि हमें बगैर किसी एफर्ट के ये हम दोनों चीजें करने लगे, तो समझ लीजिए कि अब इस रास्ते पर के सफर पर हमने पहला कदम उठा लिया है। फिर इस राह पर चलना बड़ा आसान हो जाता है। हमारे यहां अक्सर एक सवाल उठता है मुर्शिद के बारे में, मुर्शिद का। हम दुनियावी असूलों को इस राह पर अप्लाई नहीं कर पाते। इस राह के तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हमारी दुनियावी जिंदगी। इस राह में हमें मुर्शिद की इंतहा दर्जे की इताअत करना पड़ती है। अब मुर्शिद हमें एक सबक दे देता है कि ये तुम पढ़ा करो, अब होता यह है कि हम अपनी नादानी में बार बार मुर्शिद से कहते हैं कि साहब वो जो आपने मुझे पढ़ने को दिया मैं पाबंदी से पढ़ रहा हूं। हमें इसका अदराक नहीं हो पाता कि हम कर क्या रहे हैं। नतीजा उसका यह होता है कि हम मुर्शिद को अनॉय करने लग जाते हैं। वो अनॉय इसलिए नहीं होता है कि आपके कहने से उसे कोई तकलीफ होती है, बल्कि वो क्योंकि एक खास मकाम पर पहुंचा हुआ है बंदा, तभी तो मुर्शिद के मकाम पर आया है। वो अच्छी तरह एक बात को जानता है कि रयाकारी का रास्ता यहीं से जाता है। कि अगर उसका शागिर्द मुर्शिद की बताए हुए एक सबक को बड़ी खामोशी के साथ नहीं पढ़ सकता और वो अपने मुर्शिद को बार बार कह रहा है कि मैं जो आपने सबक दिया वो मैं पढ़ रहा हूं पाबंदी से, तो दिखावा आ गया उसमें। ये उसको उस मकाम पर ले जाएगा जहां पर लोगों को बताएगा कि मैं इतनी लाख मर्तबा ये पढ़ता हूं, इतनी लाख मर्तबा फलां पढ़ता हूं, इतना दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। वो फिर इस रास्ते से निकल आएगा, चल पड़ेगा। तो मुर्शिद आपको डांट कर उस राह पर जाने से रोक रहा होता है। मुर्शिद ने आपको कोई काम करने को कह दिया, आपने पलट के उसको बताया कि साहब वो जो काम आपने बताया था वो मैं कर रहा, एक बार दो बार तीन बार वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए कि ये वो राह आपने पकड़ी है जहां जताना है, और नेकी करके जताने वाले की नेकियां रब उसके मुंह पर दे मारता है। हम ये समझते हैं कि शायद वो बॉसिंग कर रहा है, बड़ा बॉस बन रहा है रोक के, वो तो आपको सुधार रहा है कि आप दिखावे की राह पर न जाने पाए, आप जताने की राह पर न जाने पाए। तीसरा, जैसे एक बात मैं कहा करता हूं कि नेकी 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 उस वक्त तक रहती है जब तक हमें यह एहसास ना हो कि हम कोई नेकी कर रहे हैं। जहां हमें एहसास हुआ कि हम नेकी कर रहे हैं, हम नेक हैं, वो तकब्बुर हो गया। तो जब हम यह ख्याल करते हैं कि मैं ये नेक काम कर रहा हूं, तो हम तकब्बुर की राह पकड़ने लगे हैं, तो मुर्शिद आपको फौरन स्नप करता है, वो रोकता है आपको। इस राह का असूल यह है कि जब जिसने ये इंतजार किया, जिसने ये रोज देखा कि मैं मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैं कहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसको कुछ न मिला, सारी उम्र वो खाली रहा। और जिसने ये राह इसलिए इख्तियार की कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, उसे सब कुछ मिल गया। तो जब हम अपने मुर्शिद से जिक्र करते हैं कि मुझे तो अभी कश्फ हासिल नहीं हुआ जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, तो वो आप पे बिगड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप उसे तंग कर रहे हैं, बल्कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो आप पर बिगड़े और आपको इस राह पर जाने से रोक ले, कि जहां कुछ नहीं मिलना आप सारी उम्र टकरे मारते चले जाएंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं, तो वह आपको वहीं स्नप करेगा। कि अगर इसलिए इबादत कर रहे हो कि तुम्हें कश्फ करामात हासिल हो जाएं, तो छोड़ दो, मत करो। अगर यह ख्याल है कि मुझे मेरा रब मिल जाए, तो बस शौक आओ इस राह पर। वो मुर्शिद आपको रोकता है इन चीजों से। ये दर हकीकत आपकी तरबियत हो रही होती है, ये तरबियत का हिस्सा है। दुनिया में बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे हैं और उन्होंने इंसानी रवैयों पर बड़ी तहकीक की, लेकिन इस पर सबका इत्तफाक हो गया कि दुनिया में तीन चीजें हैं जिसके नतीजे में इंसान के रवैये मरतब होते हैं कि उसका रवैया क्या होगा। एक जाहो हशमत है, दूसरा इंसान की नफसानी ख्वाहिश है, तीसरा उसके जरूरियात के पूरे होने के हिर्स, जिसको आप कह लीजिए। मजा ये है कि मशहूर फिलोसफर नुत्शे, उसका कहना यह है कि इंसानी रवैयों की बुनियाद जाहो हशमत के हसूल, इक्तदार के हसूल के नतीजे में उसके रवैये मरतब होते हैं। वाल्डर का कहना यह है कि जो नफसानी ख्वाहिश है इंसान के रवैये वहां से स्टेम करते हैं। फ्राइड ये कहता है कि इंसान की हिर्स उसके रवैयों को मरतब करती है। सोशलिस्ट हजरात वो मुआशी मसावात पर जोर देते हैं, लेकिन जो औलिया कराम है वो नुस्खे के हम ख्याल हैं कि इंसान के रवैये मरतब करता है, उसका ये ख्याल, उसकी ये ख्वाहिश कि वो उसे जाहो हशमत मिले, उसे इक्तदार मिले। और उसको उर्फ़े आम में अना कहते हैं। क्योंकि ये अना है जो हमें दूसरों के साथ गलत रवैये रखने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए फकर में सबसे पहले अना को तोड़ा जाता है। जब हम किसी फकीर के पास जाके शागिर्दी में उसकी बैठते हैं और उसे अपने आप को उसका शागिर्द बनाते हैं, तो वो सबसे पहले एक काम करता है कि वो हमारी अना को तोड़ता है, हमारी अना को खत्म कर देगा। इसी पे मैक्सिमम वक्त लगता है। वो हमें रियाजत की राह पर लगाता है तो हमारी नफसानी ख्वाहिश को मारता है वो रियाजत के जरिए से। वो हमें सबर की राह दिखाता है। वो हमें कहता है कि रोजे रखो, नफली रोजे। वो सबर की राह दिखाता है। फकीर दर हकीकत किसी एक खास पहलू पर काम नहीं करता इंसान के, बल्कि वो इन तीनों जहतों पर काम कर रहा होता है बयक वक्त। इसलिए जब मुर्शद ये समझता है 30-35 साल के बाद कि उसका शागिर्द अब परफेक्ट हो गया, तो उससे पहले उसको इम्तिहान में डालता है। बगैर इम्तिहान में डाले वो कभी अपने शागिर्द को वलायत नहीं बख्शेगा कि जाओ तुम फलां इलाके में बैठ के अब इस्लाम की तबलीग करो, वो तुम्हारी वलायत है। सबसे पहले उसे इम्तिहान में डालेगा, उसको टेस्ट करेगा कि कहां तक पहुंचा। हम लोग तो बदकिस्मती से तसव्वुफ, रूहानियत, वलायत, इसको हमने नाम दे दिया उस चीज का जिसको औलिया किराम सबसे ज्यादा हकीर समझते हैं और उनसे जान छुड़ाते फिरते हैं, और वो है कशफ करामात, जो सही बहानों में फकीर है वो इनसे जान छुड़ाता फिरता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रेक्शन है, मैं इसी में भटक के रह जाऊंगा, क्योंकि लोग उसकी जान नहीं छोड़ते, फिर उसकी इबादत में खलल वाकई होता है, उसने बहुत मेहनत करके अपना गुस्सा खत्म किया होता है, तो जब बार बार लोग तंग करते हैं इरिटेट होने लगता है, जिसके नतीजे में उसमें गुस्सा बढ़ने लगता है, तो उसे अपनी सारी उम्र की मेहनत जाया जाती दिखाई देती है, इसलिए दूर भागता है खल्के खुदा से, दूर रहना चाहता है। औलिया कराम जो इन चीजों को हासिल करके बहुत आगे निकल गए होते हैं वो उन्हें बहुत हकीर समझते हैं, और हम उसको निशानी समझते हैं किसी के वली अल्लाह होने की, जबकि वो इब्तदाई चीजें हैं। आज लगता है कि मैं बहुत ही तल्ख बातें करने पे उतर आया, हालांकि आपके डर के डर से कोशिश किया करता हूं कि तल्ख ना होने पाऊं। मैं माफी चाहता हूं अगर आज बहुत तल्ख हो गया। किसी ने एक सवाल रखा है, क्या मौजूदा बंकारी का निजाम रबा पर इन्हासार करता है? अगर ऐसा है तो इस्लाम क्या मुतबादल निजाम फराहम करता है? इस्लाम एक डिफरेंट कंसेप्ट का नाम है जिसमें शौक और जज्बे से आसानी से सफर हो जाता है। इस्लाम ने जो निजाम दिया उसकी बुनियाद खौफ खुदा पर रखी है। हम उन तमाम अहकामात को देख लें जो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन पर मबनी है। मुसलमान को तलकीन की गई है कि वो खुद खाना खाने से पहले देखे कि उसके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं बाकी है। मुसलमान को यह तलकीन की गई है कि अल्लाह ताला ने उसे जो कुछ अता फरमाया है वो लेस फॉर्चुनेट लोगों के साथ शेयर कर ले। इस्लाम में तलकीन की गई है कि अपने मकरूज को सहूलत दे दो। इस्लाम में तलकीन की गई है, बल्कि यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने जिन तीन चीजों को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया है उनमें एक है मुसाफिर को खाना खिलाना, या इसको हम आज के जमाने पे फिट कर लें तो भूखे को खाना खिलाना। दूसरा है किसी मकरूज का कर्ज अदा कर देना, और तीसरा है गुलाम को आजाद कराना। लेकिन आजकल के जमाने में गुलाम नहीं है, तो जो कैप्टिव लेबर है जैसे भट्टे ईंटों के भट्टे पर, यह आम रिवाज है कि कुछ पैसा मालिक उधार दे देता है और फिर उनसे काम लेता रहता है। जानवर से भी इंसान ऐसे काम नहीं लेता जैसे उनसे काम लेते हैं। वो हैं या वो कैदी हैं जो सजाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जुर्माना अदा न करने की वजह से कैद में हैं, तो उनको रहा करवा दिया जाए। जिस जिस बात की इस्लाम ने हमें तलकीन की है उसकी बुनियाद खौफ खुदा ही पर है कि हम रब को राजी करने के लिए काम करते हैं। तो इस्लाम के तमाम निजाम की बुनियाद खौफ खुदा पर है, रब की रजा पर है। तो कर्ज हसना का कंसेप्ट भी इस्लाम ने दिया है। जो हुकूमती मामलात हैं वो बैतुल माल के जरिए से चलते हैं, और बैतुल माल में जकात का पैसा आता है। अब जकात की अदायगी जो है उसमें कहीं इनकम टैक्स जैसी शर्त नहीं है कि हम हर मुसलमान बैतुल माल को अपनी वेल्थ टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट देगा, इनकम टैक्स स्टेटमेंट सबमिट करेगा, वहां स्क्रूटनी उसकी होगी कि उसने सही कैलकुलेट किया या नहीं किया। वो तो इंसान ने खुद अपना एहतसाब खुद ही करना है, अपनी स्क्रूटनी खुद ही करनी है उसने, कि पूरी दयानदारी के साथ उसने हिसाब किताब लगाना है कि मेरे पास काबिल ज़कात दौलत कितनी है और उस पर वो खामोशी से दे दे ज़कात। तो इस्लाम का निजाम तो खौफ खुदा पर मबनी है, इसीलिए इस्लाम के अंदर जो पीनल कोड है वो दुनिया का सबसे मुख्तसर तरीन पीनल कोड है, इतना मुख्तसर कहीं नहीं है। अगली इतवार तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।